ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का आज के सवेरे के भागवतम में स्वागत है। आज हम श्री मद भागवत के छठे स्कंद से, पहले अध्याय से दूसरे श्लोक से पढ़ रहे हैं, सेकंड वर्स। प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने योसावलिन प्रकृतेर्गुणा योसावलिन प्रकृते गुणसर्गः पुनः पुनः। प्रवृत्ति झुकाव से, लक्षणः लक्षित च भी एव निस्संदेह त्रैगुण्य प्रकृति के तीन गुण, विषयः विषयों के रूप में, मुने हे मुनि, यह जो असौ वो अलीन प्रकृते जो माया के पास से मुक्त नहीं हो पाता, उसका गुणसर्ग जिसके भौतिक शरीरों की सृष्टि होती रहती है, पुनः पुनः बारंबार। अनुवाद इस प्रकार से है, हे मुनि सुखदेव गोस्वामी, जब तक प्रकृति के भौतिक गुणों के संक्रमण से, जब तक जीव प्रकृति के भौतिक गुणों के संक्रमण से मुक्त नहीं हो जाता, वो विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करते रहता है, जिनमें वो आनंद या कष्ट पाता है, और शरीर के अनुसार उसमें विविध अभिरुचियां होती है। इन अभिरुचियों का अनुसरण करने से वो प्रकृति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग से होकर गुजरता है, जिससे वो स्वर्गलोक तक ऊपर पहुंच सकता है, जैसा कि आप पहले तृतीय स्कंद में वर्णन कर चुके हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता में नवे अध्याय में 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, यान्ति देव व्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के कारण जीव में नाना प्रकार की प्रवृत्तियां या लालसाएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए वे विविध गंतव्यों को प्राप्त होने के योग्य होते हैं। जब तक मनुष्य भौतिक रूप से आसक्त रहता है तब तक वो भौतिक जगत के प्रति आकर्षण के फलस्वरूप स्वर्ग तक उठना चाहता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान घोषणा करते हैं, जो लोग मेरी पूजा करते हैं वो मेरे ही पास आते हैं। यदि किसी को परम भगवान तथा उनके धाम के विषय में जानकारी नहीं होती तो वह केवल उच्च भौतिक स्थिति पर ही ऊपर उठना चाहता है, किंतु जब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस जगत में बार बार जन्म मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो फिर वो भगवत धाम वापस आने की कोशिश करने लगता है। यदि वो गंतव्य यानी कि लास्ट स्टेशन को पा लेता है तो फिर उसे भौतिक जगत में दोबारा आने की आज आवश्यकता नहीं रह जाती। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो हम इसी को यहीं पर रोकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे। तो आज के माघ पूर्णिमा की सबको बधाई हो। माघ महीने की पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र होता है और इस दिन में जो भी आप कार्य करते हैं वो यशस्वी हो जाता है। इसलिए संकल्प करने के लिए या कोई आध्यात्मिक जीवन में जो हम पहले से नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कोई कार्य हो तो उसको आज आरंभ करने से यश प्राप्त होता है, रुचि उत्पन्न होती है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को भागवत पढ़ने में अभी भी इतनी रुचि नहीं है, उनको शुरुआत करनी है पढ़ना, तो आज बहुत बढ़िया दिन है। किसी को अगर 64 माला करने की तमन्ना है कई सालों से, तो आज आप 64 माला करेंगे तो वो आपको यश मिलेगा, उसमें यशस्वी हो जाएंगे, आगे भी करते रहेंगे। किसी को सेवा करने में रुचि नहीं है समझो, तो आज सेवा करेंगे तो उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यश का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता, इसी को यश कहते हैं। बाकी अपनी प्रसिद्धि या अपना यश में कोई मतलब नहीं होता है। तो कुछ समय इस श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। अभी 6वां अध्याय शुरू हो रहा है, बहुत ही सुंदर, जिसमें अजामिल की कथा आएगी। भगवान नाम का गौरव होगा और कैसे अजामिल के जीवन में भगवान नाम ने कमाल कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जाना कहाँ था और कहाँ पहुँच गया केवल भगवान नाम की कृपा से। हाँ, तो भाग्य हमारा बहुत ही, ऐसे कथानक हमारे जीवन में आते हैं, इनका परिचय होता है, ये बहुत ही भाग्य की बात है। क्योंकि कई लक्ष जन्मों के पुण्य कर्म और अज्ञात सुकृति के कारण ही श्रीमद् भागवत के जैसे ग्रंथ का परिचय होता है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। जैसे हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल में सवेरे हम प्रार्थना में भागवत का एक श्लोक पढ़ते हैं और उस श्लोक पढ़ने के समय प्रार्थना गाते हैं शिक्षाष्टक और उसके बाद में एक श्लोक भागवत का निरूपण करते हैं। उस समय 50-60 कर्मचारी खड़े होते हैं लेकिन 200 मरीज बैठे रहते हैं डॉक्टरों के इंतजार में इधर उधर और सब भागवत सुनते हैं। तो मरीज बनकर आए हैं लेकिन भागवत सुन रहे हैं जिस समय उपस्थित हैं। ऐसा नहीं कि 10:30 को आ जाएंगे, ऐसा नहीं, 10 से 10:15 के बीच में वहाँ बैठे मिलेंगे तो उनको भागवत सुनने मिलेगा। लेकिन उस समय वही पहुँच जाता है जिसके अनंत जन्मों के पुण्य फलित हो गए हैं, वही वहाँ पहुँच जाता है और श्रीमद् भागवत के वचन उनके कान पर पड़ते हैं। ये बड़ी कैसा है कि हम लोग बहुत सारा पुण्य करते रहते हैं, अच्छा काम वगैरह वगैरह, लेकिन उसका जब फल प्राप्त होता है भगवान की कृपा, तब हम लोग तत्पर या सतर्क नहीं रहते हैं। तो कृपा आती है और चली जाती है और हम लोग सतर्क रहते नहीं हैं। इसलिए हमारे जो 5 इंद्रियां हैं ना, जैसे आंखें हैं, कान है, जिह्वा है, त्वचा है और नाक है, इनमें से हम इस विश्व के ज्ञान को ग्रहण करते हैं ना, और कोई रास्ता तो है क्या? यही 5 रास्ते हैं, इसमें से हम विश्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वो 5 इंद्रिय जो हमारे वो एंटीना की तरह है, वो हमेशा सतर्क रहने चाहिए, कब कैसी कृपा होगी उसको तुरंत ग्रहण करना। एंटीना क्या करता है? जो भी लहरें आती है तुरंत ग्रहण करता है, आपको टीवी पे दिखा देता है तुरंत। तो वैसे हमारी ये इंद्रियां जो हैं वो एंटीना है, आत्मा के टीवी पर क्या दिखाना है क्या ग्रहण करना है, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। और कहते हैं वृंदावन धाम में ये जो एंटीना है ना, वो वृंदावन धाम की कृपा से 100,000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, ग्रहण करने की शक्ति वृंदावन धाम की कृपा से। कुछ ग्रहण कर लिया तो उसका 100,000 गुना लाभ आपको यहां केवल बैठने से मिलेगा, इतनी शक्ति है इस भूमि के अंदर। कभी कभी हम लोग यहीं पर रहने के बाद भूल जाते हैं, यही रह रहे हैं अभी, क्या है इसमें। जब आते थे पहले तो बहुत ज्यादा उत्साह था, यहाँ रहने आने के बाद में ठंडे हो गए हम लोग, ऐसा कभी होता है। लेकिन हम ठंडे हो या गर्म, लेकिन धाम की महिमा वैसी रहती है, धाम वैसा ही शक्तिमान रहता है, वैसा ही 100,000 गुना अधिक प्रभावी रहता है। और इसके संपर्क में जो भी आता है उसको उसका लाभ होता है, तो सतर्क रहेगा उसको बहुत लाभ होगा। तो श्रीमद् भागवत अभी ये 6वां स्कंद में अजामिल का गौरव होगा, अजामिल के जीवन के कारण नाम का गौरव होगा। इसमें शुरुआत में ऐसे प्रश्न आते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव जी को पूछ रहे हैं कि आपने ये बताया इस स्कंद में, वो बताया प्रथम स्कंद में, सेकंड में इसने ये बताया, थर्ड में ये बताया। तो बार बार व्यक्ति इस दुनिया में आकर बार बार कर्म करता है, बार बार आता है, क्या करे उसके लिए? तो सुखदेव जी बताते हैं कि बार बार आने के बाद में जो मनुष्य जीवन प्राप्त होता है उसमें जो जो भी गलत कार्य किए हैं उसका प्रायश्चित होना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित जैसी बात जो है वो केवल मनुष्य कर सकता ना। जानवर प्रायश्चित कर सकता है क्या? पंछी कर सकता है, बंदर कर सकता है प्रायश्चित? हाँ, आपका आया और आपका बैग छीन के लेके गया, अभी वहां जाके प्रायश्चित कर रहे हैं, ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। तो प्रायश्चित जैसी बातें जो है ना वो मनुष्य ही कर सकता है। तो मनुष्य जीवन में आने के बाद वो कह रहे हैं सुखदेव जी कि आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो फिर वो सुखदेव जी को प्रश्न पूछते हैं कि प्रायश्चित करने के बाद भी व्यक्ति पाप कर्म करते रहता है, क्योंकि इसमें वो वर्णन दिया प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब इंद्रियों के द्वारा भोगने का प्रयास करना, इंद्रियों के द्वारा भोग लेने के प्रयास करना, इसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। तो कहते हैं जब तक ये प्रवृत्ति नहीं खत्म होगी तो आप प्रायश्चित करते जाओ, जन्म जन्मांतर तक प्रायश्चित करने का मौके मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि तो पाप कर्म करते रहेंगे तो उसके प्रायश्चित करने ही पड़ेंगे, उसके बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता है। सुखदेव जी बता रहे हैं बिना प्रायश्चित किए हुए यहां से मुक्ति नहीं हो सकती है। और उसके आगे जाकर कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि वास्तव में ये जो प्रायश्चित करने का रास्ता जो है ये परफेक्ट रास्ता नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित करने का जो कारण है, क्या कारण है कि हमने गलती किया, गलती किया इसलिए प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन गलती करने को नहीं छोड़ेंगे तो प्रायश्चित करते रहना पड़ेगा तो अभी फिर उसके पीछे जाना पड़ेगा एक कदम पीछे कि गलतियां कैसे ना करें। तो उसके लिए कहते हैं ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, सुखदेव जी बता रहे हैं। आगे आप श्लोक पढ़ेंगे, सुनते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, सुखदेव जी बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त होगा तो व्यक्ति को पता चलेगा कि ये गलत है और ये सही है। बिना ज्ञान के कैसे मालूम पड़ेगा? चोरों के घर में जन्म लेंगे, जन्म ही चोरों के घर में है, चोरों के घर में गर्भ में आएंगे, गर्भवती जन्म देगी और चोरी करने का ऐसा लगेगा क्या? ये तो नॉर्मल जीवन है, चोरी तो करना ही चाहिए, इसके अलावा क्या करेंगे, ऐसा लगेगा तो उसको कभी लगेगा ही नहीं कि यह गलत कार्य है। लेकिन बाहर किसी से, चोरों के समाज से बाहर जाकर किसी से मिलेगा तो कहे भैया तू क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। अच्छा, ज्ञान प्राप्त हुआ तो चोरी करना छोड़ सकता है वो। तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि ज्ञान अगर मिलेगा, सद असद विवेक बुद्धि मिलेगी ज्ञान प्राप्त करने से, बुद्धि शुद्ध होकर सद असद सार असार क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है वो समझेगा, तो फिर शायद वो चाहते हुए भी फिर गलत कार्य नहीं करेगा। उसके आगे जाकर सुखदेव जी बताते हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि चोर को बोला चोरी मत करो कल से चोरी बंद, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि वो अंदर की एक प्रवृत्ति, इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्लिविटी, टेंडेंसी कहते हैं उसको। हमारे भी संपर्क में ऐसे लोग थे, बड़े पढ़े लिखे, डबल ग्रेजुएट MBBS के बाद 3 डिग्री प्राप्त किए हुए, लेकिन बचपन से एक आदत है छोटे से कि जो दिखेगा ना उठा के ले जाने का, कोई देख नहीं रहा है उठा के ले जाने का, एक प्रवृत्ति है। तो सुपर स्पेशलिस्ट बनने के बाद भी 60,000 का इक्विपमेंट वो डॉक्टर उठा के लेके गया, क्योंकि उसके उसके ऐसे आदत है, उसने कई चीजें ऐसी चुरा के अपने घर पे दवाखाने में रखी थी। बाद में पता चला कि उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है कि वो व्यक्ति में ऐसी एक प्रवृत्ति होती है अंदर से, ऐसी अंदर से वेग होता है कि जो दिखेगा ना वो उठा के लेके जाएगा। खाने की वस्तु हो, वापरने की वस्तु हो, मोबाइल हो और इक्विपमेंट हो, उसको लगता है ये उठा के ले जाना चाहिए बस। तो हमारे अंदर भी ऐसी प्रवृत्ति है, विषय दिखे तुरंत भोगना चाहिए उसको। ज्ञान तो हो चुका है कि नहीं करना है, अभी शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, ये नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, सब सुन चुके हैं, लेकिन बार बार फिर भी करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है, अच्छा है, कम से कम हम समझेंगे कि भाई गलत है और कम से कम यहां थोड़ा दर्द होगा। तो फिर उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है सत्संग। अच्छे भक्तों का, प्रामाणिक भक्तों का संग मिलेगा ना, तो फिर वो प्रवृत्ति को रोकने की शक्ति प्राप्त होगी हमें। तो प्रवृत्ति है, ज्ञान भी है, फायदा क्या है उसका, काम तो वही करते रहेंगे। हम कहते ना, अर्जुन भी बोलते हैं, अरे क्या करे इस मन को, मैं झंझावात को रोक सकता हूं, क्या कहते हैं साइक्लोन, हाँ तूफान को मेरी भुजाओं से मैं रोक सकता हूं, लेकिन ये मन में जो प्रवृत्ति है अनंत इच्छाओं की, भोग लेने की, उसको मैं रोक नहीं सकता भगवान। तो क्या कहते भगवान, अभ्यास है ना तो कौन तैया, अभी तुम अभ्यास करते रहना, प्रयास करना, लेकिन प्रयास अपने आप करने में यश नहीं प्राप्त होता है। प्रयास जब भक्तों के संग में करते ना, तो उनकी प्रेरणा से, उनके बल से, उनके कृपा, जो उनको कृपा प्राप्त है, उससे फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि हम इससे छूटेंगे। तो आप बताइए, आप में से सब लोग को पता है कि जब तक हम इंद्रिय भोग से मुक्त नहीं हो सकते, तब तक हम भगवान के धाम का दर्शन नहीं कर सकते, सबको पता है ना, लेकिन सबको डिफिकल्टी है, फिर भी रोके कैसे उसको, ये मन की वेगों को रोके कैसे। तो वो जब भक्तों, प्रामाणिक भक्तों के संग में शुद्ध भक्तिपूर्ण प्रक्रिया को जब हम अपनाएंगे और अपनाते रहेंगे, करते रहेंगे भक्तों के संग में, अकेले नहीं, हाँ एकांतिकिर हरे भक्तिर उत्पात ये वही कल्पते, वो तो उत्पात ही बनाएगा। साथ में भक्तों के रहकर जब नम्रता से इसका पालन करेंगे, तो फिर धीरे धीरे ये प्रवृत्ति नष्ट होती जाएगी। 10 साल के बाद लगेगा अभी गुस्सा जो आ रहा है वो 10% कम हो गया है, ऐसा आपको लगेगा। मेरे आपको शुभकामनाएं कि ऐसा दिन आपके जीवन में आए कि आप भी मन में प्रामाणिकता सोचेंगे कि हाँ अभी गुस्सा नहीं आता है। अभी जब भी प्रसाद की लाइन में ही खड़ा रहता हूँ और मेरे पहुँचते पहुँचते जब स्वीट खत्म हो जाता है तो नहीं गुस्सा आता है, पहले आता था बहुत, ये क्या मैनेजमेंट है, सबको मिलना चाहिए, सबको खत्म कर दिया, पहले वालों को चाचा दोना दे दिया, हमको बाद में एक बूंद भी नहीं मिला, इतना मेहनत किया, सेवा किया, एंड में आया तो स्वीट खत्म। अभी लगता है ठीक है, नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है वही है, चावल ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये परिवर्तन होता है भक्तों की कृपा से, भक्त भजन करने से। तो इस प्रकार से फिर सुखदेव जी ये सब बताने के बाद कि प्रवृत्ति निवृत्ति का वर्णन करते हैं, जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक भक्ति नहीं हो सकती। तो अभी अगर पतित से पतित जीव का भी उद्धार करना है तो क्या करना चाहिए, तो फिर वो अजामिल का स्टोरी शुरू करते हैं, कैसा ऐसा अजामिल था, ऐसा ऐसा पापी था, फिर उसका वर्णन करते हैं कि कैसे केवल नाम प्रभु के आश्रय से, हाँ अनजाने में जब ग्रहण किया तो क्या चमत्कार हुआ उसके जीवन में, वो हमारे लिए प्रेरणा देने के लिए। नाम प्रभु सबसे बड़ी भेंट है हमारे इस जीवन में, सबसे बड़ी भेंट अगर हमारे लिए कुछ है वो नाम प्रभु है। कुछ किसी को देना है सर्वोच्च भेंट, वही नाम है। हम लोग क्या कुछ साड़ी देते हैं या कुछ शर्ट पीस देते हैं या कुर्ता पीस देते हैं या बीड बैग देते हैं किसी को, अच्छा है, लेकिन प्रभु के नाम को देना, और जिनके पास प्रभु का नाम पहले से है उन व्यक्तियों को प्रभु के नाम की प्रेरणा देना, उसमें और लगाव या रुचि उत्पन्न होने की प्रेरणा देना, ये भेंट है, सर्वोच्च भेंट है, उसके ऊपर कोई भेंट नहीं है। जो जीवन मृत्यु के चक्र से हमको मुक्त कर सकता है वो, उससे बड़ी कोई भेंट नहीं हो सकती है। बाकी सारी जो हमारी भेंट है वो इंद्रियों को प्रवृत्त करने वाली है, लेकिन भगवान नाम की जो भेंट है वो इंद्रियों को परावृत्त करके भगवान की ओर हमें प्रवृत्त करने वाली भेंट है। तो वही हमारे सच्चे मित्र हैं जो हमें, हमको कड़वा लगेगा, ए क्या प्रभु जी बार बार वही बोलते रहते हैं, कभी कुछ दुनियादारी की बातें भी करना चाहिए, कितना दिन दिन भर भगवान के बारे में चर्चा करते रहेंगे, उसका टाइम हो गया ना मॉर्निंग में 9 बजे खत्म हो गया वो टाइम। अभी तो कुछ थोड़ा सा होना चाहिए, नहीं ऐसा हो लग सकता है, लेकिन डॉक्टर कभी भी मीठी दवा देता ऐसा गारंटी नहीं है। डॉक्टर आपको कड़वी दवाई देगा जो आपके हित में है, आपको रोग से मुक्त करने वाला है, वो डॉक्टर बिना हिचकिचाट के आपको डॉक्टर अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे वो आपके कल्याण के लिए कड़वी दवा देगा और बोलेगा ले लो इसको, और माँ को बोलेगा इसको पिलाओ। बच्चा फिर बहुत आतंक करेगा, फिर भी बाद में ठीक हो जाएगा अगर वो लेगा तो। सुखदेव जी हमें पहले प्रायश्चित के बारे में बताते हैं, फिर प्रायश्चित का मार्ग कैसा व्यर्थ मार्ग है वो बताते हैं, उसके बाद में प्रायश्चित के मार्ग के ऊपर उठकर कैसे ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान के ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति कैसे करनी है, उसके बाद में भगवत धाम भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करनी है, उसके बारे में अजामिल के आख्यान के सहायता से हम सबको समझाते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए उसको, छठे संत को। आज माघ पूर्णिमा है, आज नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का आविर्भाव दिन है, तो उनका गौरव भी करना चाहिए। नरोत्तम दास जी का जन्म आज के दिन हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जब इस विश्व थे, विश्व में थे, तभी नरोत्तम जी नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु के अंतर्दान होने के बाद में उनका आविर्भाव हुआ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब खेतुरी ग्राम में गए, आज के तारीख में खेतुरी ग्राम कहाँ है? बांग्लादेश में, भारत में, मतलब भौगोलिक भागत में नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जब पद्मा नदी के किनारे गए तो नरोत्तम 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 ऐसे पुकारने लगे, अचानक आवेश में आकर, साधारणता से नहीं, आवेश में आकर पुकारने लगे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के मंडली में नरोत्तम नाम का कोई भक्त नहीं था। तो सब लोग पूछ रहे, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम कौन है, नरोत्तम कौन है? तो बहुत देर में आवेश में रहे, उसके बाद तो शांत हुए, तो उन्हें कहा कि नरोत्तम आने वाला है, ये मेरा परम भक्त है, ये इसी ग्राम में जन्म लेगा। फिर उसी समय उन्होंने वो नदी है ना, नदी पद्मा नदी, पद्मा नदी देवी को आह्वान किया, आ जाओ। तो पद्मा देवी शरीर रूप में प्रकट हुई उनके सामने हाथ जोड़कर, क्या आदेश है भगवान। भगवान ने उनको आदेश दिया, मैं अभी आपके जल में स्नान करूंगा और मेरे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसकी पूंजी आप में समर्पित करूंगा, और यथावकाश जब नरोत्तम मेरा भक्त यहां जन्म लेकर आएगा, पहली बार जब स्नान करने आएगा, तो ये पूंजी उसके हृदय में आपको स्थापन करनी है, ये मेरे लिए मेरा आपको आदेश है। इस तरह से महाप्रभु चैतन्य ने उसमें स्नान किया और अपना प्रेम अपनी इच्छा से उस जल में समर्पित कर दिया। यथावकाश कायस्थ राजा के पुत्र के रूप में, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में नरोत्तम का जन्म हुआ। तो बचपन से ऐसे दुनिया में कोई रुचि नहीं है, कोई इंद्रियों में रुचि नहीं है, किसी वस्तु में रुचि नहीं है। वो तो राजकुमार थे, ज्येष्ठ राजकुमार, उनको आगे राजा होना था, वो तो युवराज थे, लेकिन बचपन से एक भी कर्ण की भी उसको रुचि नहीं है, राज कारोबार में नहीं है, धन में नहीं है, भोग में नहीं है, किसी भी नहीं है। ऐसे ही जैसे लगता ना कि कोई बच्चा पागल है क्या, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन पूरे दिन भगवान में मग्न रहता था। एक दिन घूमते घूमते पद्मा नदी के किनारे आया बालक, और जैसे ही प्रवेश किया ना, तो उनका रंग जो था ना शरीर का, वो सांवले रंग का था, गोरा भी नहीं था, लेकिन जैसे ही जल में प्रवेश किया तो उसका शरीर स्वर्ण आभा का बन गया, स्वर्णांकित हो गया पूरा, और भाव में विभोर होकर विश्व बेहोश होकर गिर गए। क्योंकि उसी समय जब वो नदी में प्रवेश किए तो पद्मा नदी और चैतन्य महाप्रभु एकत्र प्रकट हो गए, और उन्होंने गले लगाया नरोत्तम को, बालक नरोत्तम को, और जैसे गले लगाया उसमें प्रेम का आवेश हो गया, स्वर्ण रंग की आभा उत्पन्न हो गई और गिर गए किनारे पे बेहोश, और फिर वो अदृश्य हो गए। 4 दिन तक पड़े रहे वहां पर, घर के लोग परेशान है, ढूंढ रहे सब जगह पर, कहां है बालक, कहां गया, कहां। आखिर में बेहोश अवस्था में मिले पद्मा नदी के किनारे, माता पिता देख रहे हैं सब लोग, अरे स्वर्ण कांति कैसे हो गई इसकी, जो सांवले रंग का था, और वो तो ऐसे भाव में था, आंखों से अश्रु बह रहे उसके, स्तंभित था। फिर घर ले गए उसको, फिर भी बड़ी लंबी दास्तान है उनकी, कई घंटे लगेंगे बताने के लिए। संक्षेप में कहा जाए तो चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं जब वे बड़े हो जाते हैं। राज्य में रुचि नहीं इसलिए पिताजी संतोष दत्त उसके छोटे भाई को, दूसरे नंबर के भाई को राजा बना देते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु स्वप्न देते हैं, कहते हैं कि आप जाओ वृंदावन, वृंदावन जाओ और लोकनाथ महाराज से दीक्षा ले लो। तो ये सब कुछ छोड़कर विरक्त होकर संन्यास्त होकर ब्रज में आए। केतुरी ग्राम कहाँ है पता है ना आपको? बांग्लादेश से चल के ब्रज में प्रवेश किया उन्होंने। और उस समय ऐसा स्थिति थी कि लोकनाथ जी महाराज और सब लोग जगन्नाथपुरी में थे, और लोकनाथ जी महाराज को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप अभी वृंदावन चले जाओ। तो भूगर्भ गोस्वामी आए, बोले कि मुझे इनसे बहुत प्रेम है, मैं इनको छोड़ के नहीं रह सकता, क्या मैं भी जा सकता हूँ उनके साथ में? तो महाप्रभु जी को बड़ा आनंद हुआ। जब दो भक्तों के अंदर प्रेम होता है भगवान को बड़ा आनंद होता है। उन्होंने कहा कि यस, मेरी आपको अनुमति है, आप भी चले जाओ। तो दोनों वृंदावन में आए। उस समय पूरा वृंदावन जो था वो सब लुप्त हो चुका था, उसमें कोई भी स्थान प्रकट नहीं था। वज्रनाम द्वारा पुनर्स्थापित किया हुआ सजाया हुआ ब्रज तो था, वो सब लुप्त हो चुका था। और ये ऐसे दोनों जंगल में पुकारते घूमते थे भगवान को, आंखों से आंसू लाते हुए, भाव विभोर अवस्था में। बाह्य दुनिया का कोई भाव चेतना कोई जानकारी ऐसी नहीं थी उनको, पूरे तुरिया अवस्था में ऐसे घूम रहे भगवान का नाम लेकर, आंखों में आंसू लेकर। वन वन में भटकते थे, कहाँ कहाँ, वृंदावन में भटके, कुमुद वन में भटके, खदीर वन में भटके, सब जगह भटके भटके भटके। तो खदीर वन में उन्होंने कुछ समय के लिए निवास किया लोकनाथ जी महाराज ने। और इतने विरक्त थे वो, एक तो विरक्ति कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विरक्ति एक नेगेटिव यानी एक गुण है कि भाई दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दुनिया में इंटरेस्ट ना होने से कुछ नहीं होता है। भगवान में इंटरेस्ट होगा तो दुनिया में इंटरेस्ट ना होने का कोई मतलब है? केवल दुनिया में इंटरेस्ट नहीं है इसका कोई मतलब नहीं होता है। उसके साथ अगर भगवान में आपको रुचि है, भगवान में आसक्ति है, भगवान में विभोरता है, मन लगा हुआ है, तो वो उस विरक्ति को कुछ कीमत है। नहीं तो वो विरक्ति अपने आप में कहीं नहीं पहुंचाती हमें। भगवान के प्रति आसक्ति जो है वो हमको कहीं अच्छी जगह पर अच्छे स्थान पर पहुंचाने के रास्ते में छोड़ सकती है। तो ये वहां पर इतने विरक्त थे और इतने भाव विभोर थे, उनके भाव विभोर होने का मतलब विरक्त होने का कारण ही ये था कि इतने भगवान के भजन में भाव विभोर थे वो, कि दुनियादारी का कोई वस्तु आकर्षित ही नहीं कर रहा उनको। तो उनके लिए कोई सेवा ही नहीं मिल रही है किसी को। तो नरोत्तम जी वहां आ जाते हैं और चरणों में गिर जाते हैं, महाराज सेवा दो। बोले मैं क्या सेवा करूंगी, मेरी मुझे कोई जरूरत नहीं किस चीज की। नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो सेवा दीजिए। लोग ऐसा जीवन था विरक्त कि कोई सेवा ही नहीं उसकी। ऊपर से कह रहे कि मुझे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन देकर स्वप्न में आदेश दिया है कि आपसे अनुग्रह ग्रहण करना है। तो क्या कह रहे उनको? अरे उन चैतन्य महाप्रभु के लिए मैं यहां पर तड़प रहा हूं उनके विरह में, और वो आपको दर्शन दे रहे हैं, आलिंगन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। आप तो मेरे गुरु होने के योग्य हो और कह रहे हो कि मुझे दीक्षा दो मैं आपका गुरु बन जाऊं, ये मुमकिन नहीं है। तो मतलब टाल देते हैं उसको, क्योंकि वो स्थिति में नहीं थे किसी को शिष्य बनाकर उसको ट्रेनिंग दे दे और उसको शिष्य बनाकर रखे। लेकिन नरोत्तम दास जी को भगवान का आदेश था तो ये बहुत निश्चय में थे। तो कई बार गए, कई बार उनको मना किया गया कि मैं नहीं कर सकता दीक्षा आपको। तो नरोत्तम दास फिर क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या सेवा करें। ऐसे कहते हैं कि जिसको सेवा करनी होती है ना उसको सेवा मिली जाती है, निश्चय होना चाहिए। जैसे हनुमान जी थे ना हमारे, उनको इतनी सेवा करते थे कि सब लोग परेशान थे। सीता देवी, लक्ष्मण और जितने भी शत्रुघ्न, भरत, जितने भी सेवक थे राम के, सब लोग परेशान थे कि कोई सेवा छोड़ते नहीं, सब सेवा ले लेते। तो एक दिन सब उनका सेवा इन्होंने ले लिया, मतलब अभी हनुमान को सेवा देना ही नहीं है, बस सब ले लिया सेवा। तो हनुमान जी आए, देख रहे थे ये सेवा जो करते थे वो कर रहे हैं, ये कर रहे तो वो कर रहे हैं, वो कर रहे, वो कर रहे, अभी क्या करें, कुछ बची ही नहीं सेवा। फिर भी डटे रहे, सब लोग बोल रहे हैं क्या कर रहे हो? नहीं, जब भगवान जमा ही देंगे तो चुटकी कौन बजाएगा, ये सेवा तो रह गई। क्योंकि उनको परेशानी ये थी कि ये तो अंतर भी बैठे हैं, सर दरबार में भी बैठे हैं, गर्भगृह में बैठे हैं, अंतर कक्ष में हैं, सब जगह पर विराजमान हैं, इनको हटाए कैसे? अभी वो कह रहे हैं कि जब भगवान जमाई देंगे तो हम चुटकी बजाएंगे। अभी जमाई किधर भी आ सकती है ना, दरबार में आ सकती है, भोजन करते हुए आ सकती है, जब अंदर बैठे तब आ सकती है, जब बाहर बैठे तब आ सकती है, जब चल रहे तब आ सकती है, अभी अब पता है ना आपको, क्लास में आ सकती है कहीं भी आ सकती है। तो वो ऐसे ऐसे खड़े हैं, ऐसे हाथ ऐसे रेडी है, ऐसे चुटकी बजा दूंगा। तो सब लोग ने शरणागति स्वीकार कर ली, भाई हनुमान जी माफी चाहते हैं, आपकी सेवा ले लो, सब करो अपने अपना सेवा। अरे हनुमान जैसे व्यक्ति को सेवा से वंचित करने की किसकी हिम्मत हो सकती है, और कौन इसमें यशस्वी हो सकता है। सब ये बड़े बड़े दिग्गज लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सब हार गए, हनुमान जी का इनको तो कोई ईर्ष्या नहीं थी उनसे, लेकिन हनुमान जी का सेवा का गौरव करने के लिए उन्होंने ये लीला किया। तो वैसे इतने विरक्त बाबा की क्या सेवा करें, कोई सेवा ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, सुबह मतलब आज के विचार से समझो 3-2:30 बजे ये गोस्वामी जी जंगल जाते थे प्रातर्विधि करने के लिए, तो ये जाकर वो जगह साफ करने लगा जहां पर प्रातर्विधि हो चुकी है पहले वाली, वो साफ करके जल का लोटा रख के जा रहे हैं। तो लोकनाथ जी रोज आ रहे हैं, देखते हैं अरे इतनी मेरी जगह इतनी साफ कैसे हो सकती है, बस लोटा भी रखा हुआ है, कई दिन देखा। तो एक दिन अपने समय के जल्दी गए और झाड़ी में छुप गए, तो क्या देखते हैं, नरोत्तम जी आंखों में आंसू लेकर वो जगह साफ कर रहे हैं जंगल में जहां विष्ठा विसर्जित की गई है, और वहां का जल का लोटा रख रहे हैं आंखों में आंसू लेकर। तो पीछे से जाके झपके उसके ऊपर, नरोत्तम तुम तो राजकुमार हो, युवराज हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो राजा होने के योग्य हो, इतनी निम्न सेवा क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि अगर गुरु की सेवा नहीं है और गुरु ही नहीं है तो मनुष्य जीवन का अर्थ ही क्या है, कुत्ता बिल्ली का जीवन भी अच्छा है उससे, अगर मनुष्य होकर किसी को गुरु का अनुग्रह कृपा प्राप्त नहीं है तो मेरा युवराज होने का क्या अर्थ है, सब बेकार है ये सब चीज। ऐसे गले लगाए उनको प्रेम से, दोनों ने आंसू बहाए, गुरु जी ने आंसू से वर्षाव किया उनके ऊपर, और वहीं उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया खदीर वन में। ऐसा भाव हमारा होना चाहिए, ब्रज में हम रहते हैं तो सेवा भाव ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ब्रज में की हुई सेवा जो है प्रामाणिकता से सच्ची भाव से चेतना से मन से विचार से की हुई सेवा जो है वो सीधे गौलोक तक तो पहुंचा सकती है हमको, इतनी शक्ति है उसके अंदर, हर चीज जहां पर लक्ष्य गुना प्रमाणित है गुणित है, और सही चेतना भी उतनी गुणित है। अगर सही चेतना में यहां करेंगे मुंबई में करेंगे तो उसका फर्क है। तो नरोत्तम जी को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन कहा कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, ट्रेनिंग दे सकता नहीं, मेरी वो अवस्था ही नहीं है, मैं अपने होश में नहीं हूं, आप वृंदावन जाइए और जीव गोस्वामी के साथ में रहकर उनके निर्देश में आप शिक्षा प्राप्त कीजिए। फिर गुरु जी का आदेश लेकर वो वृंदावन आए, तब जीव गोस्वामी यहाँ पर दामोदर मंदिर में रहते थे, उनके पास वो आचार्य श्रीनिवास भी आए हुए थे, और अंबिका कालना से गौरीदास पंडित के शिष्य हृदय चैतन्य के शिष्य जो थे श्यामानंद दुखी कृष्ण वो भी वहाँ पर आए हुए थे। तो नरोत्तम जी श्यामानंद जी और श्रीनिवास आचार्य इन्होंने मिलकर शिक्षा ग्रहण की जीव गोस्वामी से, और चैतन्य महाप्रभु के पीढ़ी के बाद में 6 गोस्वामी की पीढ़ी आई, उसके बाद में ये तीनों ने तीसरी पीढ़ी का कार्य संभाला। तो नरोत्तम जी महाराज इनके कई चमत्कार हैं, जैसे इनकी शिक्षा पूरी हुई तो फिर वो जानवा देवी ने ग्रंथ मांगे वैष्णवों के, गौड़िया वैष्णवों के ग्रंथ मांगे, क्योंकि उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस तो होता नहीं था, अगर आपको कोई किताब चाहिए तो आपको खुद बैठकर उसका हैंड कॉपी करना पड़ेगा, आज हम कर सकते हैं क्या ऐसे। तो उस प्रिंटिंग प्रेस को ढूंढने वाले को लाख लाख कोटि कोटि अब जो धन्यवाद है, नहीं तो हम लोग पढ़ ही सकते नहीं थे उसको, हम लोगों को पता नहीं है कि क्या प्रक्रिया होती है, वो उसमें पत्ते पर लिखते थे उसको, वो पत्ता भी विशेष रूप से ढूंढ के लाना पड़ता था, उस पर विशेष टाक से लिखते थे और कुछ करके उसको फिक्स करते थे, फिर वो पत्ता रखते थे ऐसे, फिर अगला पत्ता लिखना है फिर रखना है, और अगर उसको कॉपी चाहिए आपको तो आपको दोबारा उसको उतारना पड़ेगा। एक भागवतम लिखना है 18,000 श्लोक तो कितने साल लगेंगे उसको, पता नहीं। आज हम जो जाते हैं दुकान में, इधर मंदिर के बाहर बोले भागवतम दे दो, तुरंत 5 मिनट के अंदर भागवत आपके हाथ में आ जाते हैं, वो भी सब तात्पर्य के साथ, वो तो केवल श्लोकों की बात कर रहे हैं हम। तो जानवा देवी ने कहा कि बंगाल के कुछ ग्रंथ नष्ट हो गए, हमको ग्रंथ चाहिए। तो ये सारे जो ग्रंथ जीव गोस्वामी के पास थे, जीव गोस्वामी तो उस समय के प्रधान आचार्य थे, सब लाइब्रेरी उन्होंने कॉपी करके जानवा देवी के लिए भेजा। तो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम श्यामानंद को भेज दिया। वो बड़ी लंबी कहानी है, वो चोरी हो गए, फिर श्यामानंद आचार्य श्रीनिवास तो उधर चले गए बीरम्बीर राजा के पास वाण विष्णुपुर पे, और श्यामानंद जी अपने गांव अपने स्तर चले गए, और नरोत्तम जी खेतुरी ग्राम चले गए। और फिर नरोत्तम जी का जो प्रचार है उसका एक बड़ा लीलाओं का अध्याय शुरू हो जाते हैं, भक्ति रत्नाकर में उसका सुंदर वर्णन दिया गया है। तो कुछ कुछ सीमित समय में बताने का प्रयास करूंगा मैं। उधर एक खेतुरी ग्राम में जब ये लौट के आए ना, तब संतोष जी उनके छोटे भाई तो राजा बन चुके थे, और ये पहुंचे तो उनका इतना सत्कार किया गया, उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रचार किया अपने गांव में, सबको वैष्णव बना दिया। और फिर उधर एक गोडाउन था, गोदाम चावल का, तो सब गांव के लोग वहां पर डरते थे कि इसमें ना बहुत भयंकर सांप है, यहां पर तो इतनी विष की बू आती है कि इसके पास जाने से भी चक्कर आने लगता है, और डर तो अलग है ही, लेकिन कुछ भी है उसके अंदर, चावल के गोदाम के अंदर कुछ विशेष वस्तु है मूल्यवान, सबको ये एहसास था, अनुभूति थी। जब नरोत्तम जी वहां चले गए तो सबने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, उसके अंदर कोई चमत्कार है, कोई गूढ़ वस्तु है। जब नरोत्तम जी उस गोदाम के पास चले गए ना, तो सारे जितने विषैले सांप थे वो करके सब निकल गए वहां से, बाकी सबको काटते थे वो आके बाहर। नरोत्तम जी के केवल प्रवेश करने के प्रयास से, पास जाने से सारे सांप निकल गए उसमें से, कुछ भी किसी को हिंसा न करते हुए। फिर नरोत्तम जी ने अंदर प्रवेश किया और ठाकुर जी के 5 विग्रह प्रकट किए उसमें से। उसमें से एक विग्रह है आज के तारीख में राधा गोकुलानंद के मंदिर में, आप जाएंगे आपके सामने दर्शन करेंगे तो आपके लेफ्ट में जो चैतन्य महाप्रभु का विग्रह ऐसे हाथ ऊपर खड़ा है, वो एक विग्रह है। और दूसरा विग्रह है राधा ब्रजमोहन जो ज्ञान गुदड़ी के पास में है, जहां पर उद्धव और गोपी का मिलन हुआ था पहली बार, दूसरी बार उद्धव क्यारी में हुआ था, पहली बार ज्ञान गुदड़ी, जहां पर पहली बार उद्धव जी को एक कहते ना प्रथम अनुभूतियां प्राप्त होने लगी वहां पर। वहां पर बहुत सुंदर एकांत स्थान है ब्रज में, बहुत ही सुंदर शांत, उसके सामने वो मंदिर है पीले रंग का, जिसको आज हमारे परम पूज्य इंद्रदुम्न महाराज और उनके भक्तों ने मिलकर बहुत सुंदर सवारा है उसको। कई साल पहले तो वो बहुत जीर्ण अवस्था में था वो मंदिर, अभी उसको बहुत सुंदर सवारा है। तो संतोष को, संतोष दत्त जो राजा थे उनको उन्होंने आदेश दिया कि विग्रह वृंदावन पहुंचा दो। तो ये वृंदावन में पहुंच गए राधा ब्रजमोहन। राधा ब्रजभवन में नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत समय तक निवास किया है। अभी अभी तक उस मंदिर में उनके द्वारा जप की हुई माला भी थी, उन्होंने पहने हुई हरनाम चद्दर भी थी, उन्होंने पढ़ा हुआ श्रीमद भागवत भी था, और उन्होंने पूजा की हुई गिरिराज की शिला भी उस मंदिर में है। लेकिन जैसे देखिए, जब हम गए थे कई साल पहले, 15 से 20 साल पहले, तो उन्होंने वो थाली में ऐसा हरनाम चद्दर ला के दिया, वो इतना पेपर जैसा था कि अगर धक्का देते तो पाउडर होकर गिर जाता, इतना नाजुक और इतना पुराना, 400 वर्ष पुराना। और भागवत उनका और उनका उनकी गोवर्धन शिला, उनकी जपमाला संभाल के रखी थी। लेकिन जब मैं 2 दिन पहले सब लोगों को लेके गया था तो उन्होंने कहा ये सब नष्ट हो गया, वो जीर्ण होकर समाप्त हो गया, ना भागवत रहा, भागवत भी पूर्णा जीर्ण होकर उनका ग्रंथ था वो समाप्त हो गया। अभी गोवर्धन शिला है, और जपमाला के बारे में पूछा तो उनको पता नहीं है। ऐसे ही है, आज आप ब्रज में हो तो आप कुछ चीज आपको दिखाई पड़ रही है, 10 साल के बाद में आएंगे हरि बोल, काल का प्रभाव ऐसा है कि जो आपने देखा है वो नष्ट हो। जैसे कि यहां पर मदन मोहन जी के मंदिर के नीचे श्री कृष्ण भगवान के शरीर से निकले हुए स्वेद बिंदु का एक सरोवर था, बिल्कुल नीचे प्रस्कंदन सरोवर, जो हमने 35 साल पहले देखा था, आज नहीं हो, जब भगवान को 12 सूर्यों ने उष्णता दिया था तो भगवान पहले ठंडे थे, फिर वो उष्ण हो गए, फिर उष्ण से बाद में उनको पसीना आया और वो दिव्य स्वेद से वो उतर के नीचे सरोवर तैयार हो गया, प्रस्कंदन सरोवर, वो आज नहीं है। अभी हम उधर गए थे सूर्यकुंड पे, तो वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी ने भजन किया है सूर्यकुंड पे। मधुसूदन बाबा गौड़ीय वैष्णव थे, उनके सानिध्य में उन्होंने भजन किया है। अभी वो रूम ही गायब है और किसी को पता भी नहीं है कैसा रूम था इधर, तो ये पवित्र स्थान नष्ट हो गया ना। इस तरह से आप आगे जाते रहेंगे तो आपको मिले सब स्थान लुप्त होते नजर आएंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जब यात्रा करते हैं हम लोग, तो उस स्थान को हृदय में ग्रहण करो, क्योंकि बाद में समय हृदय में ही देखने का आएगा, उसका बाहर नहीं देखेगा। जो इधर याद है उसकी वही दर्शन कर सकते हैं बाद में, आपके नजरों के सामने से ओझल हो जाएगा वो स्थान। तो ये थी कहानी राजा ब्रजमोहन मंदिर की। लेकिन आज भी नरोत्तम दास द्वारा सेवित राधा ब्रजमोहन जी वहां विराजमान है, बड़े सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर, और गोवर्धन शिला जी भी उनकी द्वारा पूजित है। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर का हमारे लिए योगदान क्या है, उन्होंने बहुत ही सुंदर भजन लिखे हुए हैं, जैसे वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम से बहुत सुंदर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर, बहुत गहरे प्रेममयी भाव के वर्णन उन्होंने भजन में लिखे हैं। उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, वो प्रार्थना नाम का उनका संग्रह है, ऐसे कई सारे संग्रह उनके हैं। वैष्णव संप्रदाय में, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत महत्वपूर्ण और क्या कहते हैं उसको, साइजेबल, हाँ, बड़े आकार का योगदान ग्रंथों के रूप में उन्होंने हमको दिया है। उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक और विशेष वर्णन भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में आता है, वो है उन्होंने आयोजित किया हुआ चैतन्य महाप्रभु की जयंती गौर पूर्णिमा उत्सव। जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो चुके थे और सब लोग अंतर्धान हो चुके, नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए, पंचतत्व अंतर्धान हो गए, और कोई है ही नहीं, रूप गोस्वामी छह गोस्वामी भी अंतर्धान हो गए, जानमा देवी थी फिर भी नित्यानंद प्रभु की पत्नी, उस समय वो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव की नेता के रूप में पूरे भारत भर में भ्रमण करती थी, ऐसा उनका महात्म्य था। एक लाइन तो कहना चाहिए, उनका नाम निकला है तो, कि जहां जहां वो चलती थी और जिन जिन को देखती थी वो ऐसे देखने से भाव विभोरों का गिर जाते थे, प्रेम भावेश होकर जिसको जिसको देखती थी, यहां देखा उधर देखा, जहां देखा वहां पर लोग ऐसे भाव विभोर होकर गिर जाते थे, इतना उनका प्रभाव था। तो वो जानमा देवी खेतुड़ी ग्राम में चली गई, और उस समय खेतुड़ी ग्राम में उन्होंने पहला चैतन्य महाप्रभु के जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया। और उस समय के जितने भी महान भक्त थे, नरहरि सरकार, मुकुंद सरकार, जितने भी थे, रघुनंदन ठाकुर, कितने नाम बताएं आपको, वो सारे उसमें उपस्थित थे। और नरोत्तमदास ठाकुर ने इतना सुंदर आयोग प्रोग्राम, इसका गौर पूर्णिमा का उत्सव आयोजित किया था कि जानमा देवी ने स्वयं अपने हाथ से भोग बनाया था। जानमा देवी यहां पर भी जब आई थी वृंदावन में, तो हरेक मंदिर में, मदन मोहन जी के मंदिर में, गोविंद जी के मंदिर में, गोपीनाथ के मंदिर में, सब मंदिरों में उन्होंने अलग अलग दिनों पे बहुत बड़े बड़े भोज भगवान को अर्पण किए, और सबको अपने हाथ से खिलाए, सबको हाथ से बनाए, हाथ से खिलाए, भगवान को अर्पण करके बहुत लोगों को अपने वात्सल्य का अनुभव दिया, आनंद दिया। तो उन्होंने वहां पर चैतन्य महाप्रभु के गौर पूर्णिमा के उत्सव के उपलक्ष्य में पूरा भोग खुद बनाया, और फिर वो बहुत सुंदर उत्सव हुआ, भगवान को बहुत भव्य भोग लगाया गया और महाआरती हुई। उसके बाद जो कीर्तन शुरू हुआ उसमें नरोत्तम जी गाने लगे और सब भक्त लोग इतने भाव विभोर हो गए, सब शरीर का भान भूल गए अपना, बड़े बड़े महान और बड़ी संख्या में भक्त थे और सब ऐसे भाव विभोरों को नाच रहे थे, पुकार रहे थे गौरांग महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, कृष्ण को, बलराम को, राधा रानी को, सबको वो इतने प्रेम से पुकार रहे थे, जैसे हम लोग होता ना, वो बारिश का मौसम होता है ना, तो हम तिल्ली लेते हैं, माचिस लेते हैं, और ऐसे 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 बहुत देर करते, अचानक जल जाती है, पता नहीं कहीं लग गया। तो इस तरह से ये पुकार रहे पुकार रहे पुकार रहे पुकार, अचानक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हो जाते हैं, जो अंतर्धान हो चुके हैं, सबको दिखाई पड़ रहे हैं, भाव विभोर को नृत्य करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, भक्तों को गले लगाते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। आप जरूर भक्ति रत्नाकर में पढ़िए उनका वर्णन, इतना सुंदर वर्णन है कि क्या भक्ति थी नरोत्तम दास ठाकुर की, क्या उनके अंदर रुचि आसक्ति थी भगवान के प्रति, कि उनके पुकारने की वजह से सब भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए, सबको लाभ मिला उनका, प्रत्यक्ष देखा उन्होंने अपने आंख से, भास नहीं हुआ उनको, स्वप्न का दृष्टांत नहीं हुआ, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किया उनका। वो सब लोग बेहोश हो गए कुछ समय के लिए, फिर उठे, फिर नृत्य किया, फिर बेहोश हो गए, फिर उठे, फिर अश्रु बहाए सब लोग, सब प्रकार के विकार जो हस्त विकार प्रकट हो गए उनके शरीर में। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे एक भक्त होना चाहिए, एक भक्त भी काफी है, रात के अंधेरे में उजाला देने के लिए एक चांद भी काफी है, हजारों टिमटिमाते हुए सितारों की जरूरत नहीं है। वैसे एक चांद थे नरोत्तम दास, इतना सुंदर उनकी लीलाएं हैं। और आज भी अगर हमको सबको अगर नरोत्तम दास जी का संग करना है, समझो हमको इच्छा है कि नरोत्तम दास जी का संग होना चाहिए, तो आप उनके भजन गाइए, क्योंकि साधु लोग जो होते हैं ना वो अपने वाणी के द्वारा हमेशा रहते हैं, और वाणी होती है गद्य, यानी कि आप कुछ स्क्रिप्चर लिख रहे हैं हो सकता है, और एक होता है पद्य यानी भजन यानी काव्य, और काव्य में बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ तरीके से हृदय के भाव प्रकट होते हैं, एकदम संपृक्त यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड रूप में, काव्य के रूप में मन के अंदर के जो भाव है वो प्रकट होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि अभी देखिए वृंदावन धाम रम्य स्थान जो उन्होंने लिखा है उसके अंदर केवल 4-5 पंक्तियां हैं, लेकिन उसमें दिव्य वृंदावन क्या चीज है वो संक्षेप में उन्होंने समझाया है कि वृंदावन में क्या स्थिति है, और कह रहे हैं बीच में कमल है, उसके अंदर सिंहासन पे राधा रानी और कृष्ण भगवान विराजमान है, 8 पंखुड़िया उस कमल की प्रधान पंखुड़िया है, उसमें प्रधान सखियां खड़ी है अपनी नाना प्रकार की सेवा कर रही है, और कहते हैं कि वो उनको रिझा रहे हैं, हास परिहास विनोद कर रहे हैं, और जुगल जोड़ी स्मिता हास्य कर रही है, और वो उनको रिझा रहे हैं मधुर मधुर वाणी से, हंसा रहे हैं उनको, कमल खिले हुए हैं, राजहंस घूम रहे हैं, राज हम सकेली कोले लीला कर रहे हैं, ये सुंदर दृश्य है, और नरोत्तम दास सखी के रूप में उसको देख रहे हैं, और क्या प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये प्रार्थना है कि ये दृश्य जो है वो मेरे मन पटल में हमेशा बना रहे, ये जो आपके प्रेम दिलाए हैं मेरे हृदय के पटल में हमेशा स्फुरित होती रहे, प्रकट होती रहे, ऐसी तमन्ना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमको सबको करना चाहिए, लेकिन जो हमको दिखाई पड़ रहा है उनको कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है। हम भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, राधा कुंड श्याम कुंड कुसुम सरोवर सब जगह जाते हैं, जमुना जी, लेकिन जो नरोत्तम जी को दिखाई पड़ रहा है वो हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम उनके भजन गाते हैं, उनके भाव के नेत्रों से हम उसका दर्शन करते हैं, कि जिस जमुना को हम देख रहे हैं, जिस कुसुम सरोवर को हम देख रहे हैं, उसके अंदर वो अनंत पंखुड़ी वाला स्वर्ण कमल है, उसके बीच में जगह पर रत्न सिंहासन पर कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, सखियां सेवा कर रही है, गान कर रही है, नृत्य कर रही है, राजहंस डोल रहे हैं, कमल खिल रहे हैं, तो ये हमको विचार करते हुए दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो नरोत्तम दास जैसे आचार्यों की कृपा है जो हमको सही वास्तविक वृंदावन का दर्शन करा रहे हैं वहां पर। और फिर क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि आज जो सुन रहा हूं उनकी वाणी से वो मेरे हृदय में हमेशा स्फुरित होता रहे, मेरे मन में यही चलता रहे। हमारे मन में क्या चलता है, हमेशा दिन रात विषयों का चिंतन चलता है, हमको और आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन निरंतर विषयों का चिंतन मन के बैकग्राउंड में चलते रहता है। इट्स लाइक नित्य लीला। नित्य लीला का मतलब क्या होता है कि वृंदावन के किसी दो पटलों के पीछे नित्य लीला चलती रहती है, आपको कुछ गटर दिखाई पड़े कुछ भी दिखाई पड़े वो लीला चलती रहती है, वैसे हमारे मन के पटल के अंदर ये विषयों का चिंतन निरंतर चलते रहता है, हमें हमको उसका अनुभूति भी नहीं है कि चल रहा है, ये उसको प्रयास पूर्वक निश्चय पूर्वक हमको काटना पड़ेगा, छेदन करना पड़ेगा उसका। तो वृंदावन धाम हमें वो मदद करेगा, और संतों ने जो वृंदावन में वास करके जो भी कुछ लिखा है उसका श्रवण करने से वो शक्ति प्राप्त होगी कि वो निरंतर चलने वाला नित्य लीला जैसा चिंतन जो है वो खंडन होगा उसका, और कृष्ण का चिंतन उसमें प्रवेश करेगा, और जितना अधिक आप में प्रवेश कराओगे उतना वो चिंतन समाप्त हो जाएगा और उतना हम कृष्ण के हो जाएंगे। तो जरूर हमको नरोत्तम दास ठाकुर के अलग अलग भजन जो है उसमें जो हमको नहीं दिखाई पड़ता है वो आपको दिखा रहे हैं, और भक्तों को अगर कुछ देखना है तो कान के माध्यम से ही देखना चाहिए, नेत्रों से जो क्या दिखाई पड़ेगा वो आपको भरोसा नहीं है। हाँ, एक समय में लुकलुक कुंड में गया था तो प्लॉट काट कर उसको बिल्डिंग बनाने के लिए बेच दिया गया था, तो कुछ संतों ने उसको खरीद लिया और लुकलुक कुंड जैसे रखा उसको। नहीं तो हम कहते थे कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये लुकलुक कुंड की जगह है, ऐसे कह देंगे आप, एक कथा करेंगे आ जाके, समझे आप। तो संत ही ऐसे लोग होते हैं जो हमें दृष्टि देते हैं, दिव्य दृष्टि से दर्शन कराते हैं, जो हमें नहीं दिखाई पड़ता है उसका दर्शन कराते हैं। वो हमको लौकिक दृष्टि, लौकिक स्तर से पार करा के पारलौकिक स्थिति में स्थापित करते हैं वो, और वो नहीं भी होंगे तो भी उनकी वाणी हमको वहां पर स्थापित करती है। इसलिए ठाकुर भक्तिविनोद ने भी ये कहा है कि वैष्णव कभी मर नहीं जाता है, वैष्णव अपनी वाणी, अपने संस्कार, अपनी शिक्षाओं के द्वारा हमेशा जीवित रहता है, और हमें आकर ऐसे वैष्णवों के आश्रय ग्रहण करके उनके कृपा से ये दिव्य दर्शन करते रहना चाहिए, तो हमारा वृंदावन धाम वास सफल है। तो वृंदावन धाम में भी कोई कम पाप नहीं चल रहे हैं कलयुग के प्रभाव से, वृंदावन धाम भी हमें पूरी तरह बहका सकता है। कहते हैं सबसे अधिक माया वृंदावन धाम में होती है, क्योंकि जहां कृष्ण है वही कंस था, मुंबई में नहीं था, वो वही था, पुतना भी वही थी, सब लोग वही थे, मुंबई में शांति थी उस समय सब आतंक यहां ही चल रहा था। कृष्ण के होते हुए भी माया का सबसे अधिक प्रभाव वहां पर होता है। चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते ही भी होते हुए भी काल कृष्ण भ्रष्ट हो गए, भ्रमित हो गए, चले गए भट्टारी के पास, गए कि नहीं गए, कृष्ण के संग होते हुए पर्सनल असिस्टेंट के रूप में होते हुए भी भ्रष्ट हो गए वो। यहां पर इमली तला में कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बैठकर नाम प्रभु के विषय में प्रवचन कर रहे थे 2 महीने तक, तो उनका सब प्रवचन चल रहा है, भगवान स्वयं प्रवचन दे रहे हैं, फिर भी उनके भक्त लोग भाग रहे हैं कि भाई कालियाघाट में भगवान का अवतार हुआ है, दर्शन करके आए क्या, तो भगवान ने डांटा है उनको बहुत। तो ऐसे सारे वहम यहीं पर होते हैं। लेकिन अगर हम धाम में संतों के संग में रहेंगे या संतों के वाणी के संग में रहेंगे और अपने मन को हमेशा उसमें लगाए रखेंगे तो हम वास्तव रूप में वृंदावन में निवास कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम आएंगे लोई बाजार में सब कुछ खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे वो खरीदेंगे, वहां पर बरसाने में जाकर वो खरीदेंगे, गोवर्धन में जाकर सोन पापड़ी खरीदेंगे, इधर जाकर ये खरीदेंगे, बोला क्या बढ़िया यात्रा हुई, हाँ बिहारी जी के पास जाके लस्सी पी के टिक्की खा के आएंगे, बोला क्या यात्रा हुई, बहुत बढ़िया, इसमें इतना आनंद आया ना क्या बताएं आपको, सब जगह का बेस्ट हमने लाभ लिया। लेकिन ये वृंदावन की यात्रा नहीं है, वृंदावन की यात्रा यानी संतों के संग का लाभ। नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो भजन है वो हमें सही वृंदावन में प्रवेश करने के लिए सहायता करते हैं। इसलिए कुछ भक्त लोग जा रहे हैं अभी राधा ब्रजमोहन मंदिर में, जरूर जाना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे संतों का जो जीवन है वही हमारे लिए आशा है। इनका संग करेंगे तो ही हमारे जीवन में आशा है कि हम भी कुछ रुचि भगवान के लिए उत्पन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? 9 तो बज गए, टाइम है तो आएंगे ना। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर, सब लोग बोलिए। आवृत कालिंदिनी रे राजा हम सकली कोरे, काहे शोभे कनक कमला। बजा करो। राजा हम सकली कोरे, काहे शोभे कनक कमला। वृंदावन के जल में, कालिंदी के जल में, राज हम्स जमुना जी के जल में लीला कर रहे हैं। उसके बीच में एक स्वर्ण का कमल है। अभी क्या हो रहा है देखिए उस कमल के अंदर।
तार मध्ये हेम पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका।
उस कमल के बीच में एक हेम पीठ है, स्वर्ण पीठ है उसके, उसमें आठ दल है उस कमल में। उस हेम पीठ में राधा कृष्ण विराजमान है और अष्ट दलों पे आठ प्रधान नायिकाएं विराजमान है और रत्नासन पर बैठकर वो सब दोनों उनकी सेवा, सब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं।
तार मध्य रत्नासने बोशिया छेंदुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका। बोशिया छेंदुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि आमिया पोड़ीचे खाशी हास्य परी हास्य संभाषणे। ओ रूप लावण्य राशि आमिया पोड़ीचे खाशी हास्य परी हास्य संभाषणे।
मतलब राधा और कृष्ण लावण्य की राशि है, अनंत लावण्य के सागर है और उनको सखियां हास परिहास करके रिझा रही हैं। आगे क्या कहते हैं, दिल की बात कर रहे हैं।
नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमोय सदाई स्फुरक मोरा मने। नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमोय सदाई स्फुरक मोरा मने। नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमोय सदाई स्फुरक मोरा मने। नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमोय सदाई स्फुरक मोरा मने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
रत्नदास ठाकुर की।